अब ऐसे बोल लोगों की बात की गई जो इसको बेस नहीं बनाते, वो कहीं और जाते हैं, किसी और को ढूंढते हैं, उनकी बात की गई। तो ऐसे सब लोग जो ऐसा करते हैं कि भाई कुरान और हदीस का, तो उनको इसलिए नहीं वहां पे आते, उस तरफ आते कि उनको लगता है कि पता नहीं वहां पे तो कोई स्ट्रिक्ट ही फैसला आ जाएगा। इसमें तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पता नहीं हमसे कोई शायद अल्लाह माफ करेगा, हमारा कोई हक मार लेगा इस्लाम, तो वो इस तरफ नहीं आते। फिर उनका क्या है, वो अपने तनाजों के फैसले कहीं और से कराना चाहते हैं। अभी तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना, लेट सी के वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में क्या कहा गया। अब यहां से ना आपको पता चलेगा कि एक वो अहले किताब का जो बात थी ना, वो खत्म हो गई है, और ऐसे लोगों की बात शुरू हो गई जो खुद तो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो कैसे मुसलमान है, वो कैसे मुसलमान है कि जो जिनके लिए रसूल की इताअत मुश्किल है। आपको पता है वो कौन थे? मुनाफिकीन। मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, मस्जिदों में आते थे, लेकिन रसूल की इताअत उनके पर बड़ी भारी थी, वो करना नहीं चाहते थे। कहते थे कुरान की बात मांग लेंगे, रसूल की बात नहीं हमने माननी। अब इनकी आप बातें कुछ सुनने में आपको आएंगी आगे आगे, ये इनका जिक्र आपको मिलेगा कि ये आप क्या करते थे। अलम तरा इल्लदीना, क्या देखा नहीं तुमने उन लोगों की तरफ, यज़ुमून, उनको ज़ोम है, यानी दे थिंक, उनके दिमागों में ये बात है, एक्चुअली है नहीं, लेकिन उनको लगता यही है, वो दावा यही करते हैं। अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कि वो ईमान लाए उस पर भी जो आपकी तरफ नाजिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है ना, कि आपने उनको देखा जो ये कहते हैं कि हम उस पे ईमान लाए जो आप पे नाजिल हुआ, यानी वो क्या है, कुरान। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पे भी ईमान लाए जो आपसे पहले नाजिल हुआ, यानी वो दावा इस्लाम का कर रहे हैं कि हम कुरान पे भी ईमान लाते हैं, हम पिछली किताबों पे भी ईमान लाते हैं। और फिर उनके हाल क्या हैं, उनके तरीके कैसे हैं, मैंने उनके पर हैरत की गई कि मुंह से तो ये कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए हैं जो आप पे नाजिल हुआ, जो आपसे पहले नाजिल हुआ, लेकिन हाल क्या है। यूरीदून अय्यतहाकमू इलत्तागूत, वो चाहते हैं कि वो फैसले ले जाएं तरफ तागूत के। तागूत वो कुव्वतें, वो ताकतें, वो सोच, वो इंसान, वो माशरे, वो हकूमत, वो काजी, वो जो अल्लाह की हदों से निकल गया हो, वो तागूत कहलाता है। ठीक है, जो हदें तोड़ चुका हो वो तागूत है, यानी ऑपोजिट, बिल्कुल अल्लाह की बात के बिल्कुल ऑपोजिट। वो चाहते हैं कि वो फैसले ले जाएं तागूत की तरफ। वक़द उमीरु अन यकफुरु भी, जबकि उनको कहा गया, उनको तो ये कहा गया था कि तागूत का आपने इनकार करना है, तागूत को नहीं मानना। ये वो कैसे मुसलमान है, यानी उनका कैसा इस्लाम है, दावे ईमान के और झगड़े अपने तागूत के पास ले जाना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि हैरत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे ना एक वाकया भी है जो कि आपको तफासीर में मिल भी जाएगा कि दो आदमियों में झगड़ा हुआ। एक जाना चाहता था काब बिन अशरफ के पास, और दूसरा कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करा लेते हैं। काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार था, तो उसके पास जाना चाहता था। दूसरा एक और भी वाकया आता है कि जिसके अंदर एक आदमी जो खुद को मुसलमान कहता था, मुसलमान कहलाता भी था वहां पे, मुनाफिक था, मगर वो एक यहूदी के साथ किसी बात के ऊपर झगड़ पड़ा, तो उसने यहूदी से कहा कि चलो काब बिन अशरफ के पास चलते हैं, वो फैसला करे। और यहूदी कहने लगा कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। हालांकि आप देखेंगे मुसलमान तो ये था, इसको कहना चाहिए था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि ये सोचता था कि काब बिन अशरफ को रिश्वत वगैरह देकर और मैं अपने हक में फैसला करा लूंगा। और जो यहूदी था वो जानता था कि मैं हक पे हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का ही फैसला करेंगे, लिहाजा वो कहता था कि नबी अलैहिस्सलाम के पास चलें। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहूदी के हक में फैसला दे दिया। और ये भी आता है कि बाद में वो हजरत उमर के पास गए थे, और उसके बाद वो आगे वाली आयत के शान नजूल में आता है, लेकिन ये वाकये में जो बाद में बात आती है कि उस मुसलमान ने फिर उसके बाद कहा कि हम चलो हजरत उमर के पास क्यों ना चलें, क्योंकि हजरत उमर, उसने सोचा कि वो तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो जब देखेंगे कि मैं मुसलमान हूं तो वो मेरे हक में फैसला करते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया हुआ, लेकिन वो मुतमईन नहीं है, और वो जाते हैं हजरत उमर के पास, और हजरत उमर जो है फिर वो उनको यहूदी कह देता है कि वैसे तो हम आपके पास आए हैं, लेकिन बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला दे चुके हैं मेरे हक में। तो हजरत उमर अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसको मुनाफिक का सर कलम कर दिया। तो लेकिन ये तफसीरों में मिल तो आपको जाएगा, मगर इसकी सनद जो है ना वो जईफ है, सनद इसकी जईफ है, ये मैं साथ बस बता दूं आपको। तो यहाँ पे हमें पता चला एक बात, जो अल्लाह ताला को ने जो फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो दावा तो करते हैं ईमान का कि हम तो कुरान पे ईमान लेकर आए और ऐसे, और इनका हाल क्या है कि ये जाते हैं अब इनके पास, ताहूत के पास, कि वो इनके फैसले करें। वह युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान तो ये चाहता है कि इनको बहका के दूर डाल दे। यानी ऐसे लोगों का हाल क्या है, उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है कि जो दावे इस्लाम के करें और उनको इस्लाम के फैसले कबूल नहीं है, नहीं चाहते कि इस्लाम हमारे दरमियान फैसले करें, वो चाहते हैं कि कहीं औरों से फैसले कराएं। और ये उन सब के लिए ट्रू है जहां पर भी इस्लामी अदालतें भी हैं और दूसरी अदालतें भी साथ ही हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम इस्लामी अदालत में चले गए, अगर शरीयत के मुताबिक हमारे साथ फैसला हुआ ना, तो फिर बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला कोई हो जाएगा। लिहाजा वो ताहूत के पास जाते हैं, दूसरी अदालतों के पास जाते हैं और वहां से फैसले कराते हैं। आज आप देखें इन मुल्कों में, जहां पे भी कोई गैर इस्लामी मुल्क में कोई भी रह रहा है, वहां पे अव्वल या तो इस्लामी अदालतें ही नहीं, या फिर इस्लामी अदालतें पैरल में हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं चाहते वहां जाना। खास तौर पे बाज दफा औरतों को यहाँ की अदालतें बहुत सारी वो फेवर्स या वो फायदे दे रही होती हैं जो कि इस्लामी अदालत के अंदर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। डाइवोर्स के मामलात हैं, कस्टडी के बाज दफा मामलात होते हैं, तो उसमें जो उनको लगता है कि इस्लामी अदालत फैसला करेगी वो तो हमें पसंद नहीं आएगा, तो वो उसको छोड़ के दूसरों के पास जाना प्रेफर करते हैं। तो ताहूत से वफादारी और इस्लाम, जिसके ऊपर कहते हैं हमारा ईमान है, उससे कराहत, ऐसे लोग तो मुनाफिक ही हैं। इसके बावजूद फिर खुद को हम कहते हैं कि हम बड़े पक्के मोमिन हैं, जबकि अगर हमें इस्लाम के कोई फैसले ही पसंद नहीं आते, बस शैतान तो चाहता ही ये है कि बहका दे इनको दूर। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, और जब ऐसे लोगों को कहा जाता है ना, देखो अल्लाह का हुक्म तो ये है, रसूल का हुक्म तो ये है, तआलौ इधर को आओ, यानी तुम ये मानो, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, तो तुम देखोगे मुनाफिकों को वो रुकते हैं, रुक जाना, कतराते हैं, डरते हैं, उनको लगता है हमारा मफाद यहाँ पे मफाद को ठेस पहुंचेगी, वो अपना नुकसान नहीं चाहते, अल्लाह का फैसला यहीं पर पड़ा रहे, ये बस किताबों के लिए है, यह बस कुरान में पढ़ने के लिए, इसके अलावा नहीं है, हम अपनी जिंदगियों में क्यों लाएं। हालांकि अगर ईमान होता तो इनको वो फैसले कबूल ना होते, समय ना वता ना करने वाला होता है ईमान वाला, पहली बात ही कही अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फकैफा, तो किस तरह, इदा असाबत मुसीबत बिमा कद्दमत अयदीहिम थुम्मा जाऊका, कैसे होता है कि जब ये इनके ऊपर फिर कोई मुसीबत पड़ती है ना, इनके अपने हाथों की वजह से, इनकी अपनी कमाइयों की वजह से, तो भागे आ जाते हैं आपके पास, आके कहते हैं, कस्में खाते हैं बिल्लाही अल्लाह की, इन अरदना इल्ला एहसान व तौफीका, कि हम तो, हमारा तो इरादा कुछ और नहीं था, एहसान का था और बाहमी मुआफ़त का था, हम उनकी अदालतों में सिर्फ इसलिए गए। हालांकि आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आपको यानी लीडर माना गया था, आपको सरदार माना गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लीडर ही वहां पे और चीजों के लिए नहीं थे, बल्कि काजी भी थे, आपके पास फैसले आते थे, और ये जो मुसलमान है यही अगर कतराते हैं, जो कहते हैं हम इनके ऊपर ईमान लाते हैं, उन्हीं को आपका फैसला कबूल नहीं, तो ये कैसे मुसलमान है फिर? यानी ये हैरत की गई। अब आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा नहीं, लेकिन आज भी जो आपके फैसले हैं वो तो मौजूद है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बता दी वो तो है ना। मिसाल के तौर पे हम देख लें, अब जितने भी अभी तक हम बातें पढ़ते आए हैं या अहादीस में हम सुनते हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करके कहते हैं हाँ हम भाई, हमें ये जो विरासत के है ना बिल्कुल हमें कबूल है, और ये जो मियाँ बीवी के हकूक बताए गए ये भी बिल्कुल हमें कबूल है, और हमें इसके अंदर कोई मसला नहीं है। या वो भाग भाग के उधर जाते हैं, और जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ जाती है उनके अपने हाथों की वजह से, तो यहां से क्या पता चला कि मुसीबतें पता है क्यों आती हैं? इंसान के अपने करतूतों की वजह से आती हैं, अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं। अब वो चाहे वो वाकया उसके उसमें जोफ है, लेकिन वो भी तो देखें, वो आदमी कत्ल हुआ किस वजह से? अपने अमल की वजह से। तो बता दिया गया वो मुखलिस नहीं है, वो पक्के मुसलमान नहीं है, उनका ईमान नहीं है, वो मुनाफिक हैं जो ऐसा करते हैं। और ऐसे लोगों पे जब मुसीबतें आती हैं तो फिर भागे आ जाते हैं, फिर कस्में खाते हैं, नहीं, हम तो बस ये चाहते थे, हम तो हर तरफ से बस चाहते हैं उनके साथ भी हम अच्छा रखें, मुआफ़कत रहे उनके साथ, हम अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं सर भलाई के साथ मामलात होने चाहिए, एहसान हम चाहते हैं। वो हमारा इरादा कोई ये थोड़ी था कि हमने आपके खिलाफ कोई फैसला कराना था, नहीं भाई, हम तो सुलह सफाई चाहते हैं, सबको सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए। यही तो मुनाफिकीन का होता है ना काम, उलाइक अल्लदीना यालम मा फी कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं अल्लाह को पता है जो इनके दिलों में है। असलियत ये नहीं है कि ये सुलह सफाई चाहते हैं, असलियत ये है कि इनको अपना मफाद प्यारा है। फारिद अनहुम, तो एराज करें आप इनसे, वाइज हुम, और इनको वाज करें, वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा। तीन बातें बताई गई कि जो मुनाफिकीन के साथ ए नबी आपने कैसा रवैया रखना है, जिनका इवन ये पता चल गया कि ये मुनाफिक है, हम तो जिनका हम तो जान नहीं सकते कोई मुनाफिक है, हम जिनको नहीं भी पता उनके साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखते, उनके साथ भी ऐसी बात नहीं करते। क्या फरमाया? ए नबी फारिज अन, उनसे दरगुजर करें, इग्नोर करें उनको, जाने दें, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, दफा करें इनको, एराज करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, जरा लाओ तो सही, मैं जरा इसकी खबर लेती हूँ। दूसरा क्या कहा गया? वाइज हूं, वाज करें उनको। वाज कौन सी नसीहत होती है? जो दिल में उतर जाने वाली हो, दिल को नरम कर देने वाली हो। हम इसकी जगह हम क्या करते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। वाज क्या करना है? वाज की तो उसको समझ आएगी ना जो उसके दिमाग कूल होगा, वो किसी को नसीहत करेगा। अब ये किसी की मुनाफत खुल जाए तो तब ये कहा जा रहा है कि ए नबी आप ये करें, चाहे आपको पता चल भी गया कि ये मुनाफिकीन है, ये काम करते हैं, ये वहां जा जाके फैसले करा रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि कहते हैं हम कुरान पे ईमान लाते हैं, हम आप पे ईमान लाते हैं, लेकिन आपको इस काबिल नहीं समझते कि आपसे फैसला कराएं। आज भी ईमान अल्लाह पे है, रसूल पे है, अल्लाह के कानून पे है, इस कुरान पे है, लेकिन पसंद वो फैसले आते हैं जो दूसरी अदालतें करती हैं। वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, है नबी आप इनसे ऐसी बात करें जो दिल के अंदर पहुंच जाने वाली हो। वो पता है इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुनाफिकीन का पता भी चल गया था, हजरत उमर कई दफा ये बात आती है कि उन्होंने फरमाया कि या रसूल आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस फलां मुनाफिकी सी गर्दन उड़ा दूं, तो आप फरमाते थे नहीं, लोग कहेंगे कि ये अपने साथियों को मरवा देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उनको ताने नहीं दिए, और ना ही उनसे बातचीत करना छोड़ दी, ना उनका मजाक उड़ाया, ना उनको जली कटी सुनाई, ना उनको बुरा भला कहा, बल्कि ये तीन काम किए। और ये कितने हौसले के काम है कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसा रईसुल मुनाफिकीन, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ भी क्या रवैया था? ये जब वो फौत हुआ था तो उसको अपनी कुर्ता दिया था, उसके बेटे ने जो पक्के सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट की थी, तो आपने अपना कुर्ता मुबारक दे दिया था, नमाज़े जनाजा पढ़ाने चले गए थे, और जिंदगी में वाज करते रहे, उनको नसीहत करते रहे। अल्लाह हू अकबर। ना ही कभी उनको ये कहा कि तुमने तो मेरे से फैसले नहीं कराए थे ना, अब मेरे पास आने की क्या जरूरत है, जाओ तुम जाके कहीं और बैठो, तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है। कितनी मुश्किल काम है ना ये करना। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। देख लें अब यहाँ पे तो बात ही सारी खत्म हो गई इसके ऊपर तो बात आ गई। हमने नहीं भेजा कोई भी रसूल मगर एक काम के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए भेजा है सिर्फ रसूल, और वो है कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के इज़्ज़न के साथ। रसूल सिर्फ ये राग अलापने के लिए नहीं आए हैं कि आप राग गाते जाएं कि हमें तो रसूल से बड़ी मोहब्बत है, हम तो नाते इतनी पढ़ते हैं, हम तो उनके ऊपर कुर्बान ऐसे हैं, हम तो हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, कोई फलां कह के तो देखे कोई। वो इसलिए नहीं आए कि आप ये राग अलापते रहें दिन रात, आप मोहब्बतों के दावे करते रहें और करें कुछ ना। वो इसलिए आए हैं कि आप उनकी इताअत करें, ये मकसद है रसूल का। अल्लाह ने इसलिए रसूल भेजे हैं कि लोग उनको फॉलो कर सकें, उनकी लाइफ ऐसी देख के लोग को आसानी हो कि हमने कैसे दीन पे चलना है, तो वो उसके मुताबिक जैसे जैसे वो कर रहे हैं उस तरह से कर सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं। तो फरमा दिया है वह माँ अरसलना, जब माँ आ जाए और आगे इल्ला आ जाए ना, तो इसका मतलब है बाकी और कोई बात ही नहीं, सिर्फ इस बात के लिए भेजा अल्लाह ने कि तुम उनको फॉलो करो। हम फॉलो नहीं सिर्फ करते, बाकी सब कुछ करते हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, वही काम नहीं करते जिसके लिए उनको भेजा गया। कितनी इताते रसूल है हमारी जिंदगियों में। वलो अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल। अगर वो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, यानी वो उन्होंने इस तरह मुनाफकत की और वो जाके वहां से फैसले कराते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं समझा उन्होंने जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, यानी उन्होंने ये काम करके अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा ना रसूल का, उन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया ना, नाफरमानी करके अल्लाह की, वो जब आपके पास आए फिर बख्शिश मांगते हैं, वो अल्लाह से भी और आपसे भी वो बख्शिश मांगे, लवजदुल्लाह तवाब रहीम, यानी अगर इन लोगों को कुछ एहसास हो जाए, पशेमान हो बाद में कि हमने ये क्या किया, उनको एहसास हो जाए, अब हमने सोच लिया कि हमने और नहीं किसी के, आपके पास ही आना है, तो और वो इस पे इतने पशेमान है कि वो अल्लाह से भी माफी मांगते हैं और वो आपके पास भी आके माफी मांगते हैं, तो फिर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। आप इस आयत को लेकर बाज लोगों ने ये बना लिया कि आज भी फिर हमें जब भी हमसे अपनी जानों पे कोई जुल्म हो जाए तो फिर हमें अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे भी जाके माफी मांगनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये मामला हो रहा है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के और जाके ताहूत से फैसले कराए थे, तो कहा गया आप जाओ जाके अब रसूल से भी, क्योंकि आपने उनके साथ भी एक उनके को हक को सल्ब किया है, ये उनका हक था, तो आप जाके उनसे भी माफी मांगे। और बख्शीश मांगता उनके लिए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दरख्वास्त करें आके कि आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे, यानी अब वो खुद भी अल्लाह से माफी मांगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आके रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे। तो यहाँ पे उन इस वजह से कहा गया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक हक मारा था, तो अब आपके पास भी आके वो ये दरख्वास्त करें। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि अब आप कब्र पे जाके कहें या रसूलुल्लाह आप भी मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगे, आप भी मेरे लिए अल्लाह ताला के सामने मेरी तौबा इस्तग़फार की दुआ करें, तो ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया है। अब इस वक्त जाके कोई आपकी कब्र पे ये कहे, ये कहाँ से पता चल रहा है? और मैंने आपको ये बता दिया ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने एक बात भी नहीं छोड़ी है, एक बात भी ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो तुम्हारे फायदे की हो, जिसमें तुम्हारी कोई भलाई हो और उसको बताने से मैंने नहीं छोड़ा, या जिसमें तुम्हारे लिए कोई शर हो उसको बताने से नहीं छोड़ा। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहना था कि जब बाद में भी तुम्हें तौबा इस्तग़फार करनी हुआ करे तो तुम मेरी कब्र पे आके मुझसे कहा करना, तो मैं तुम्हारे लिए तौबा करूंगा अल्लाह के आगे, मैं तुम्हारी ये दुआ इस्तग़फार की अल्लाह के आगे पेश करूंगा तो वो फिर कबूल हो जाएगी। ये तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और मैंने आपको सहाबा की भी जिंदगियों से बता दिया, उन्होंने भी नहीं कभी ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए, उनसे भी कहें कि वो भी अल्लाह से आपके लिए दुआ करें, जो भी मुनाफिकीन है उनको कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है, वो खुद भी अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आके कहें। इससे ये पता चल सकता है कि दूसरे की दुआ भी आपको फ़ायदा दे सकती है। कोई अगर आपके हक में दुआ करता है, आप किसी को कहते हैं मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, तो ये भी कोई मसले की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कह सकते हैं। मगर वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ समझते ही नहीं थे ना। अब इस बात में वो तभी आके कहते जबकि वो आपको कुछ समझते, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ समझते ही नहीं थे। वो कहते थे इनको हम, ये तो हमारे जैसे ही आदमी है, हम क्यों इनके पास जाएं। तो इससे पता चल जाएगा कि वाकई वो अगर सिंसियर है तो खुद भी अल्लाह से माफी मांगेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आ गए। कोई मकाम देता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहेगा ना कि आप भी मेरे लिए बख्शिश मांगे। और फिर ये आखिरी जो आयत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें। फला व रब्बी का, पस नहीं। अब पस नहीं के साथ क्यों होता है, जैसे ला उकसिमु बिहादल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूं, तो ये क्यों होता है, इस तरह से बात क्यों शुरू की जाती है? इसलिए ताकीद आए, ताकि नहीं से बात शुरू की। जैसे आप कोई कोई बात किसी की डिनाई करनी हो तो आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है भैया, ये बात है। फला, पस नहीं, वा रब्बी का, कसम है तेरे रब की। यहाँ पे वा जो है वो कसमिया है, एक वा वो और वाला भी होता है ना, यहाँ पे कसम के लिए, रब्बी का, तेरे रब की। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ए नबी आपके रब की कसम है। अब इसके बाद क्या, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कसम खा के ये बात फरमाई है, क्या कोई बहुत ही बड़ी बात ही होगी ना। ला युमिनूना, नहीं वो मोमिन हो सकते, वो अपने आप को मोमिन काउंट नहीं कर सकते, चाहे मुंह से कितना भी बोलते रहें, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता, यहां तक के, यु हक की मुंह कफी मा शजर बैनो, जब तक के वो आपको हकम ना बना ले, मुनसिफ ना बना ले, काजी ना बना ले उस मामले में जो इख्तलाफ हुआ उनके दरमियान। पहले भी ये क्या आया कि जब भी आपके दरमियान इख्तलाफ हो तो आपने अल्लाह और रसूल की बात की तरफ जाना है, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं। अगर ईमान नहीं है फिर जिसे मर्जी फैसले कराते रहो, लेकिन अगर ईमान है तो फिर इधर। इस बात को अब कसम खा के कहा जा रहा है कि ईमान वाले ये हो ही नहीं सकते। अब मोमिन आप अपना नाम रख लें, या आप मोमिन की गर्दान कहते रहे, मैं कितनी बड़ी मोमिना हूं, मैं कितनी नेक पारसा हूं, लेकिन नहीं, जब तक आप मुनसिफ नहीं बनाते हर उस मामले में जिसमें इख्तलाफ हो दरमियान उनके, फिर तुम ला यजिदु फी अनफुसिम हरजन। फिर दूसरी भी एक शर्त लगा दी गई, फिर जो फैसला वो करा ले ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर दे, ला यजिदु फी अनफुसिम हरजन मिम्मा कदईता, जो आपने फैसला कर दिया उसमें फिर अपने दिल में कोई तंगी भी ना पाए, वह युसल्लिमु तस्लीम। और ये तीसरी शर्त है ईमान वाले होने के लिए, कि फिर वो मान जाए, पूरी तरह मान जाना, सबमिट करते हैं उसके बाद। क्या तीन शर्तें हैं किसी के ईमान वाला होने के लिए, अल्लाह ताला ने बता दिया वो हो ही नहीं सकते जब तक ये तीन शर्तें ना पूरी हो। नंबर 1, आप सरसलम को मुनसिफ बनाए। अब आज कैसे मुनसिफ बनाएंगे, मैंने आपको कहा उस वक्त के लोग सहाबा कराम को कोई मामला होता ना, अब तयम्मुम की बातें आ गई, हजरत अम्मार बिन यासिर कह रहे हैं तयम्मुम इस तरह करना है, हजरत उमर कह रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं है, अम्मार बिन यासिर किस तरह से कर रहे हैं, कोई कह रहा है जमीन के अंदर लोट जाना, मिट्टी के अंदर पूरा अपने आप को मल लेना, वो ये तयम्मुम हो गया, कोई कह रहा है कि भाई अपने वजू के आजा के ऊपर सारी मिट्टी मल लेना, ये तयम्मुम हो गया। किस तरफ भागे आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप बताएं, हमारे दरमियान फैसला करें। वो तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, अब कैसे होगा? अब कुरान हदीस की तरफ आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ आए, और ये फैसला करेगी कि क्या करना है। और सिर्फ यहां तक नहीं कि आपने उस फैसले को मान लेना है, बस इतना ही काफी हो गया, ठीक है आप मान तो लेते ही हैं। अब एक मानना होता है ना कि ठीक है माना आपने, मान तो लिया, लेकिन पैर मारते जा रहे हैं, दरवाजे मारते जा रहे हैं, और गुस्सा इतना है, और मुक्के मार रहे हैं, और सर दीवारों में मार रहे हैं, और बस ठीक है मैंने मान तो लिया, लेकिन बस बहुत अंदर गुस्सा है। एक मानना है तुम ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, अपने दिल में जरा भी कोई तंगी, हरजन ना नकेरा है, यानी जरा सी भी किसी किस्म की भी तंगी नहीं आए। ये उन्होंने फैसला सुना दिया है ना, अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, हम तो अल्लाह के फैसलों के आगे तंगियां दिखाते हैं। हमें हिजाब का फैसला आ जाए, ये क्या बात हुई, ये तो नहीं हमसे होता। अब आया ये तो हम तो नहीं पहन सकते, ये क्या, बस मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। विरासत के अहकाम आ गए, वो हमें बुरे लगते हैं, हमें कहते हैं ये क्या बात हुई। अब मैं क्यों अपने बेटे को ज्यादा दूं, और बेटी को, बेटी है तो मेरी खिदमत इतनी की है, और क्या सारों को इक्वल दे दूं, और फलाना मेरा बच्चा तो इतना नाफरमान था, और फलाने का भी हिस्सा बनता है, वो तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसने तो हमारे साथ कभी अच्छी भलाई नहीं की। सिला रहमी वो तो नहीं हम कर सकते, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, हमारे माँ बाप तो हमें कहीं सैर पे ही नहीं लेके जाते थे, वो तो हमारे साथ ये करते थे और ऐसे करते थे हमारे साथ, तो ये तो हमें सारे ही नहीं अच्छे लगते। अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमें तो कोई भी नहीं अच्छा लगता, बस सिर्फ जो मेरा दिल करता है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पे कहा कि तुम ही नहीं ईमान वाले हो सकते, इस खुशफहमी से निकल आओ, हम बड़े ईमान वाले हैं। क्या ईमान वाले हो अगर तुम्हें उनके फैसले ही पसंद नहीं है। आप देख ले, हर फेज में हमें कहीं ना कहीं एतराज होता है, औरतों को अपने हकूक के लिए बड़ा एतराज होता है, हमें तो कोई हक ही नहीं मिला, ये तो सारे आदमियों को मिल गए, ये क्या बात हुई, कहीं पे मान के ही नहीं देना। अच्छा अगर मान ही लिया है तो फिर बस दिल में इतनी तंगी होती रहेगी, आए ना भी कुछ मुंह से बोले, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना कि दिल में कितनी तंगी हो रही। आए दूसरे कितने अच्छे हैं, वो तो वहां भी जा सकते हैं, वहां भी ये कर सकते हैं, हम देखो कहीं, हमें तो हलाल ही कमाना है, हम तो ये इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते, हमारे तो मजहब के अंदर बड़ी पाबंदियां हैं, हाँ भी शादी के बगैर आप किसी से ताल्लुक नहीं रख सकते, देखो ये कितने मजे से लिविंग टुगेदर करते हैं, और तो हमारे दीन ने तो बस इतना रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, और फिर तलाक के मामलात, अब ये देखो तलाक दे जो मर्जी करें साथ बेशक रहते रहे, अब हम तलाक के बाद साथ ही नहीं रह सकते, हमारी मजबूरियां क्या करें, हमें साथ रहना, मतलब कोई आप फेज उठा लें वहां पे हमें एतराज पे एतराज है, चाहे के चाहे हकूक व फराइज की बात हो जाए, चाहे फजर के ऊपर उठने की बात हो जाए, कहीं मियां बीवी के मामलात की बात हो जाए, विरासतों की बात हो जाए, पर्दे की बात हो जाए, कमाईयों की बात हो जाए, कानून की बात हो जाए, कहीं पे भी देखें ये कैसा कानून है, या हाथ काटना तो ये बड़ा जो जुल्म की बात है। अल्लाह ताला हमें माफ करे, मगर कोई फेस छोड़ा नहीं है, तो यहां पे बता दिया गया क्लियर कट और कसम खा के, और फिर हम अपनी नमाज रोजे करके ही समझ लेते हैं हम बड़े ईमान वाले हैं, पक्का मोमिन, मस्जिदें भी जाता है, और ये पक्की मोमिना देखो कितनी नमाज रोजे की पाबंद है, सोम सलात की पाबंद लिख के हम सोचते हैं ये तो बहुत नेक पाक बीबी है, वो तो मुनाफिक भी करते थे। यहां पे आके पता चलता है ना कि उनके फैसलों को मानते कितना, उन्होंने फैसला दे दिया है फलाने का हक, हाँ कितना है उनका फैसला है कि ये वाली मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, तो हदीस में आता है, अब ये हदीसें आप सुनते हैं ना, रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नमी है, तो हमें ये कहाँ चीजें पसंद आती हैं, होते रहेंगे उनके फैसले, हमने तो मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है, और मान लिया तो बड़ी तंगी है दिल में, और फरमाया जो भी आप फैसला देने वह युसल्लिमु तस्लीमा, और सरे तस्लीम खम कर दें, जस्ट सबमिट, कहें बस हमने सुन लिया, हमने बस मान लिया, बस इसके आगे जब आपसे सर हमने कह दिया तो फिर कोई बात ही नहीं, चाहे हमारे इमाम ने कुछ कहा है, चाहे हमारे किसी ने भी कुछ कहा है, ये जो उलिल अम्र है ना इनमें इमाम भी आते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं आपके रिलीजियस अफेयर्स के, चाहे वो भी कोई ऐसी बात अगर कह रहे हैं जो कि अल्लाह रसूल के उसके खिलाफ है तो नहीं माननी, ये नहीं कि नहीं आप क्या करें ना वो तो इस तरह हैं तो ये वो तो अथॉरिटी हैं फिर हमें उनकी माननी पड़ती है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, तो नहीं, रसूल की बात ऐसी है कि युसल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए इस पे, तब तुम बनते हो मोमिन, तो ये खाली खुली दावों से कुछ नहीं होता कि हम खुद ही अपने आप को मोमिन कहते रहे, ईमान वाले तो हम बहुत बड़े हैं और ये काम करते नहीं है, इसमें हर फेज आ गया, हर उनका फैसला आ गया, चाहे उन्होंने कोई किसी मामले में भी दिया हुआ, हर फैसला इसमें है, तो अब हर जगह पे इस आयत को फिट करके देखें, जो आपके जॉब की लाइफ है उसमें फिट करें, जो आपके घर की लाइफ है उसमें फिट करें, जो आपके रिश्तेदारों के साथ लाइफ है उसमें फिट करें, हर जगह पे कहाँ कहाँ मुझे उनके फैसले कबूल नहीं है, हमारे दिल में बड़ी तंगी आती है कि क्या मुसीबत है ये इस्लाम ने ये कह दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यह हम किस मसले में फंस गए हैं। और दूसरे लोग हमें बहुत, देखिए तंगी जो होती है ना वो दिल में होती है, अनफुसिहिम ये कहा गया, दिलों में, जुबान पे चाहे नहीं भी आई, दिल के अंदर तंगी है। और दिल में हसरों तो उसे उनकी तरह देख रहे हैं, इनके कितने मजे हैं वैसे, और हम देखो जरा, तो ये दिल में तंगी की ही निशानी है।